संतप्त मान से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में ते वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अपने 69 गाथा से आरंभ किया था 13 तारीख को, और अब 79 गाथा तक आ गए। 79 माने क्या कहेंगे, गुन्यासी। गुन्यासी में गाथा आज चलेगी। बहुत ही मार्मिक गाथा है, जिसे एक गाथा पर अनेक गाथाएं नेछावर की जा सकती हैं, ऐसी गाथा है। अभी तक अपन ने जो ये बात सिद्ध की है कि सुख दुख पुण्य पाप और पुण्य पाप और शुभ अशुभ परिणाम ये एक ही हैं, डबल नहीं है, इसलिए इन्हें सबको एक सा ही मानना चाहिए। और इसकी पिछली गाथा में धन्यवाद पूर्वक उसका समापन टाइप कर दिया था। अब वो व्यक्ति मान लो तैयार हो गया कि अभी मैं इस बात को तैयार हूं। अंतिम शब्द क्या था पिछले कल का, कि अब मैं शुद्धो, मेरे तो एक शुद्धोपयोग ही शरण है। अब कितनी तरह से कहें, कैसे कहें, मैंने शुभ भाव को बिल्कुल भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब अपनी शुद्ध हिंदी में कहें तो कुछ बिल्कुल भी घास डालने को तैयार नहीं है। मेरा तो एक शुद्धोपयोग ही शरण है। देखो ये जो अपनी गाथा है ना, तो ये 136 पेज है ना, आपके हाथ में किताब है, ये किताब है बड़ी, उसमें संस्कृत की पंक्ति, इसमें संस्कृत नहीं है इसलिए मैं आपको ये किताब बताता हूं। ततो मया एक मे एक ये मे वेक शरणम शुद्धोपयोग, संस्कृत में पढ़ा है पंक्ति, समझ जी मिली। हाँ देखो, ये हिंदी में यही कारण है कि आचार्य शुभ परिणामाधिकार में भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आत्मा का हित चाहने वालों को एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। समझने वाले को इतने में ही समझना चाहिए कि पूरे शुभ परिणामाधिकार की चर्चा, शुद्धोपयोग की चर्चा में तो ये बात कहेंगे ही, लेकिन शुभ परिणामाधिकार की चर्चा कर रहे और उसमें कहते हैं एकमात्र मुझे शुद्धोपयोग ही शरण है। वो ऐसा नहीं कहते, ऐसा तो होता ही नहीं है, छठ में सात में गुणस्थान की भूमिका में झूलते रहते हैं, तो दो गुना शुभोपयोग होता है और एक गुना शुद्धोपयोग होता है भावलिंगी सच्चे से सच्चे संत हो तो भी। और तुम उसको बिल्कुल उड़ा रहे, बाकी तो जिनका भगवान ही मालिक है, लेकिन जो सच्चे बिल्कुल मुनिराज हैं सतमें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, उनके भी 24 घंटे में यदि हम गिने अनुपात तो 8 घंटे शुद्धोपयोग और 16 घंटे शुभोपयोग होगा। तो 8 घंटे तो बहुत होते हैं, अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। पर केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, कि वो टूट टूट के होता है, लगातार के अंतर्मुहूर्त तक नहीं होता है, फिर सुबह आए, फिर गए, फिर सुबह आए, फिर ऐसे बार बार सुनने आते हैं। जो ऐसा सहयोगी है शुद्धोपयोग का, तो उसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, 1% भी नहीं, 50-50% मानो, ऐसा करो ऐसा करो। कायदे से तो 67% मिलना चाहिए शुभ भाव को, है वो 33% नंबर से शुद्धोपयोग पास होगा, है 2/3 और 1/3 का मामला है ना। लेकिन मेरा तो एकमात्र शुद्धोपयोग शरण है। ये बात मैं ये कह रहा हूं कि इतना अधिक काल तक शुद्धोपयोग में रहेंगे, लेकिन हमारे श्रद्धा में चित्त को 1 सेकंड भी वहां रहना स्वीकार नहीं है। बात उसकी है, हमें अभी संसार में हो सकता है सागरों पर्यंत रहना पड़ेगा, घबराना नहीं, कहीं सर्वासिद्धि में चले गए। अभी कोई कल कह रहा था कि नहीं नहीं पंचम काल में 12वें सुरग तक जाते हैं, यहां से दीप सुरग नंबर बढ़ते जा रहे हैं क्या भाई प्रसिद्ध में, हैं 16वें तक पहुंच गए। 16वें तक तो चौथे काल के ही मनुष्य जाते, उससे ऊपर तो जाते नहीं है ग्रस्त श्रावक। मेरा मतलब यह है कि इस तरह यदि स्थितियां हैं तो हम उनमें वो ये कहते हैं कि हमको यदि चलेगा 16वें सुरग में तो 22 सागर तक रहना। 22 सागर कितने होते हैं अब उसकी कल्पना नहीं है आपको सागरों की। इतना भी हमें संसार में रहना पड़े तो भी हमारे चित्त को 1 समय रहना स्वीकार नहीं होना चाहिए, तो सम्मादर्शन होगा। अब आइए पता लगता है लोगों को कैसे कैसी बात है, बैलेंस बनाना चाहिए, नयों का ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये बिल्कुल ही शुद्धोपयोग ही लगा रहे हो, ये एकांत नहीं हो गया, नहीं हुआ, घबराना नहीं। क्यों कि साथ में ये लगाना है परम शुद्ध निश्चय नए से, पीछे नए लगा हो तो 100 ही लगाओ तो भी एकांत नहीं होता है। सुना जानते नयों का जानते हैं, नए क्या होते हैं, नए कैसे होते हैं, पीछे नहीं लगाओ तो बिना ही वैसे एकांत हो जाएगा, बिना ही लगाए, और पीछे नए लगा है, पीछे अपेक्षा लगी है तो 1000 प्रश्न लगाओ तब भी वो एकांत नहीं होता है। वो एक ही नए है जो मुक्ति के मार्ग का अपने त्रिकाली जो भगवान आत्मा का सीधा स्वरूप बताता है, उसके बिना सम्मादर्शन की प्राप्ति नहीं होती। उस आत्मा को जाने बिना उसी नए से तो जानोगे, तो हमें वो नए लगाना, तुम्हें नहीं लगाना पड़ेगा, तुम तो उस आत्मा को जानना, वो ये पंडित लोग नए लगा लेंगे। वो तो नए तो प्रतिपादन में होता है। क्या तो नए तो प्रतिपादन, तुझे तो अभी प्रतिपादन तो नहीं करना है, तुझे उसमें जाना है। देखो इसमें क्लियर लिखा है, मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया ना, विगत गाथाओं के अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंच जाने पर कि एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है। अब इस ये लेन ऐसे निकाल देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये लेन में 15 मिनट लगना चाहिए मिस्टर, प्रवचन में ही नहीं, अंदर घर पर बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो ना परमात्म, तो भी ये लेन में 15 मिनट लगना चाहिए। इस पंक्ति पर हमारे उपयोग को ठिठकना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, सोचना चाहिए, उसी गंभीरता पर विचार करना चाहिए। ये ऐसी चीज है कि 1 सेकंड में कभी चलो चलो चल रहे, ये चलो चलो वाली चीज नहीं है। क्या अब इस गाथा में, अब अगली गाथा में क्या कहते हैं सुनो, कि अब मैं शुद्धोपयोग के द्वारा मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के तैयार हूं। क्या क्या बात दो, क्या कह रहे? ये इस पंक्ति के बाद ऐसा भाव आना चाहिए। देखो संस्कृत में लिखा है, तथा कुतो मे शुद्धात्म लाभा इति सर्वारंभेणो तिष्ठते। पूरी ताकत से मैं इसको कमर कसके तैयार हूं, ऐसा इसमें अभी संस्कृत की टीका में आएगा, देखना। एक पेज आगे निकालो इसकी बड़ी किताब में, उसकी संस्कृत की चौथी पंक्ति पढ़ो। अतो मया मोह बाहिनी विद्याय बद्धा कक्षेयम। ये बद्धा कक्षेयम का क्या अर्थ होता है, समझ में आई ना? मैंने अब मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। कमर कसी जानते हैं कि तुम्हारे चमड़े के बेल्ट बांध देना नहीं है। जो पुराने जमाने में युद्ध में जाया करते थे वो फेंटा लगाते थे जरा भी, पर कमर कसके तैयार होते थे ना। बद्धा कक्षेयम, मैंने कमर कसी है। आचार्य कह रहे हैं कि मोह की सेना को जीतने के लिए अब मैंने कमर कसी है। माने ये नाटक है ना, तो नाटक में वैसे तो ये नाटक समयसार कौन से रस का नाटक है, पूछूं तुम लोगों से? क्यों शांति जी, पूछूं कि नहीं पूछूं? वैसे तो ये शांत रस का नाटक है, लेकिन यहां वीर रस का उद्भव हो रहा है। कि मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। ये अभी कमर कसने की गाथा है। अपना सिर भी पूरे उस पर आ गया ना, आज चार दिन हो गए, पांचवा दिन है ना, तो क्लाइमेक्स पे आ गया है, ये गाथा भी आई है तभी। पढ़ो भाई, गाथा पढ़ो।
चत्ता पापारंभम समुद्यदो बासु अम्मी चरियम्मी नाजदि जदि मोहादि नलहदि सो अपगम शुद्धम सब छोड़े पापारंभ शुभ चारे तुम्हें उद्यत रहे पर नहीं छोड़े मोह तो शुद्धात्मा को ना लाए।
पीछे इतना कहकर के एक शुद्धोपयोग ही मात्र शरण है, और शुद्धोपयोग किसी भी कीमत पर पंच मात्र भी उपादेय नहीं है। अभी मैंने आपको ये बात कही थी ना कि भले ही हमें सागरों पर्यंत संसार में रहना पड़े, लेकिन हमसे कोई कहे कि तुम आध घंटा कहां रहना चाहते हो वो बता दो तो हम आपको वहां भिजवा दें, वो कहते हैं मैं एक भी नहीं बता सकता, जहां रहना पड़ेगा वहां रहूंगा, क्या करूं, उपाय तो मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन तुम कहोगे मैंने ये चुना है तो मैं इसको चुनने को तैयार नहीं हूं। क्यों क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैंने चुन लिया है। मैंने चुन लिया है किसको? अपने शुद्धात्मा को। अब उसमें दूसरे की कहां गुंजाइश है? एक पतिव्रता कन्या किसी महापुरुष के गले में वरमाला डाल दे, अब उससे कहें थोड़ा 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 और देख ले, अभी और सारा एक से एक अच्छे लड़के हैं, तू जिसके गले में माला डाली उसी से करना शादी। लेकिन हम लाए हैं, बुला के लाए हैं, हमने बुलाया है तो हमारी इज्जत तो रख ले। क्यों पिताजी, मेरा उनको देखने से तुम्हारी इज्जत बच जाएगी? मुझसे उन्हें रिजेक्ट करवाने में तुम्हारी इज्जत बचती है? कि जाएगी, बोलो परम सत्व ने उसे नहीं बता सकते हो कि मेरी लड़की ने चुन लिया, झगड़ा खत्म है, कि मेरे बाप का कहना नहीं मानेंगी, मां का कहना नहीं मानेंगी, मैं ऐसे मां बाप को मां बाप नहीं मानती हूं, कौन कि मैं एक को चुन चुकी और फिर दूसरे को देखने के लिए कहते हैं, वो मम्मी से कहेगी मम्मी तो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी है? वो उसकी मम्मी की खबर लेगी, लेना चाहिए, ये विद्रोह नहीं है मेरी दृष्टि से, ये वो दंडता नहीं है क्या? देखो क्या सब छोड़ पापारंभ है कि सारे पाप प्रवृत्तियां उसने छोड़ दी, कोई भी रंच मात्र पाप प्रवृत्ति उसने नहीं रखी राजन, और शुभ चारित्र में उद्यत रहे तो सारी शुभ क्रियाएं और शुभ राग शुभ भाव उसके जीवन में आ गया है, और नहीं छोड़े मोह, यदि वो मोह को नहीं छोड़ता है, माने मोह माने दर्शन मोह माने ये मान्यता कि शुद्धोपयोग के अलावा भी कोई उपादेय है, कि शुभ राग रंच मात्र भी उपादेय है, इसका नाम मोह को छोड़ना है, तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। अब वो मत घबराना कि एकांत हो जाएगा, पीछे नए लगा है कि हम आगम में निकाल के 100 जगह ये बताएंगे कि एक करेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, कितनी जगह बताओगे? 100 जगह, 1000 जगह हम बता सकते हैं, फिर भी हमें जानकर कह रहे हैं कि यदि उसके रंज मात्र भी उपादेय बुद्धि रहेगी शुभ भाव में, तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं करेगा और नहीं करेगा। चार अनियोग हैं, इतने नए हैं, कितने नए हैं, यावत वचन विकल्प तावन नया, जितने वचन के विकल्प हैं उतने नए हैं, कितने होंगे वचन के विकल्प, संख्या असंख्यात नहीं हो सकते, ये वचन के विकल्प असंख्यात नहीं हो सकते, लेकिन नए संख्यात नहीं है, नए तो असंख्यात हैं, अनंत हैं, फिर क्या हुआ, फिर कहा है कि जितने एक द्रव्य में गुण हैं, एक एक गुण को ग्रहण करने वाला एक एक नए है, अस्थि नए अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाला है ना, ये 47 नए कैसे हैं, एक एक गुण को ग्रहण करने वाले नए हैं, तो अनंत है नए भाई साहब, तो तुम तो कह रहे 100 जगह बता दें, हम तो कह रहे अनंत जगह बता दें, क्योंकि वो अपेक्षाएं भी इसी जिनवाणी में हैं, दिक्कत तो यही है भाई साहब कि वो झंडा ले लेके खड़े हो जाते हैं, सारी समाज को बताते हैं कि देखो ये लिखा ये लिखा ये लिखा ये लिखा, अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन सुबह 5 बजे उठ के जाना यूनिवर्सिटी में घूमने जाना, तो वहां सफाई कर्मचारी वो सफाई कर रहा होगा, अब वो कहता ना ये कौन सा दिन आता है, वो कहता है कि तुम हमें दान दो तो तुम्हारा मोक्ष थी जैसे क्या, तो उसे सफाई कर्मचारी को 2 रोटियां देने से भी मोक्ष होता है, ऐसा भी उपदेशक मिलेंगे जगत में, ऐसे भी मिल जाएंगे कथन, उन कथनों का हम क्या करें, अचार डालें, गुरुदेव इस बात को इसी तरह जवाब देते थे कि भाई साहब इतनी जगह लिखा है 100 जगह लिखा है, खबर छे खबर छे, कि गोमर सार में भी लिखा है कि बड़ी खबर छे बड़ी खबर छे, माने हम जो ये बात कह रहे हैं वो सब बात हमें मालूम है, उसके बाद कह रहे सोच समझ के, बिना सोच समझ के नहीं कह रहे। अरे चलो लिखा होगा, अब यहां तो ये लिखा है ना अभय जी, तो हम तो ये गाथा पढ़ रहे हैं ना, तो हमें इस गाथा का अर्थ करने दो ना, तो तुम्हारे लिए हमने ये गाथा नहीं चुनी है। हमने तो साल भर पहले ये प्रवचन सार शुरू किया था पहली गाथा से, और वहां से करते करते ये गाथा आई है नरेश जी, हमने एक गाथा भी आगे पीछे नहीं की है। ये गाथा पहले मेरठ में आने वाली थी, फिर मेरठ वालों ने कहा कठिन है कठिन है, तो नवोकार मंत्र पर मैंने 8-10 व्याख्यान किए नवोकार मंत्र अकेले पे, कहले ये तो सरल है, ये तो सबको मान्य है। फिर एक गाथा दिल्ली में आने वाली थी, कहा प्रवचन सार का नक्की किया था प्रवचन करने का, 3 व्याख्यान के बाद उनने कहा कि नहीं नहीं हमें तो समाधि मरण पर सुनना, एक व्याख्यान समाधि मरण पर कर दिया था मैंने, कहा आत्मार्थी चष्ट में, तो सुन के नहीं नहीं हमें तो समाधि मरण सुनना है, तो समाधि मरण पर 7 व्याख्यान हुए तो ऐसे ही, तो एक होगा, फिर एक से 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, पूरे और ये गाथा रह गई, क्योंकि ये गाथा तो इस शिविर में पढ़ी जानी थी, आप लोगों का महाभाग्य था। उन्यासी या सीमी जो गाथा है वो महाभाग्य की बात है, बहुत बहुत दर्शन मोह माने मिथ्यात्व के नाश करने के उपाय की विधि है ये, असली 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 काम करने की गाथा है। और अमृतचंद्राचार्य को इसकी टीका लिखने में भी मन लगा, दिल से टीका लिखी उनने, पढ़ते हैं टीका। देखो अब है तो 3 लाइन की, 4 लाइन की बस, मेरे 3 ही लाइन की है, चौथी लाइन तो अपने नया प्यारा करके कर दिया, 3 लाइन की टीका, 30 लाइन की टीकाएं भी हैं, लेकिन वो इन 3 लाइनों की बराबरी नहीं कर सकती हैं। क्या कहा देखो लिखे, जो जीव अथवा जो मुनिराज समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, क्या अर्थ है देखो, सावध योग जानते हो किसे बोलते हैं, साबद्ध योग किसे कहते हैं जानते हो, साबद्ध का त्याग किया हमने, तो साबद्ध के त्याग में क्या करना पड़ता है अध्यापन, नहीं बोलना चलेगा, गलत नहीं बोलना। एक तो त्याग होता मैंने आलू छोड़े, मैंने मूली छोड़ी, मैंने परस्त्री सेवन छोड़ा, मैंने चोरी छोड़ी, और ऐसा नहीं, अपनी भूमिका के योग्य जो जो छोड़े जाते हैं मैंने वो सब छोड़े, उसका नाम है साबद्ध योग। एक एक चीज गिन गिन के कहां तक छोड़ोगे, अनंत वनस्पतियां हैं, 10,00,000 वनस्पति के कुल हैं, और तुमने एक आलू छोड़े और कह रहे अब क्या क्या करोगे, क्या काम चलेगा, तो क्या करें कि जमीकंद छोड़ो ना, जिसमें हजारों लाखों चीजें एक साथ आ जाएं, आए सामूहिक रूप से, तो यदि मैं पंचम गुणस्थान में हूं तो पंचम गुणस्थान के योग्य जितने भी पाप हैं वो पापों का छोड़ना जिसमें जरूरी है, उसमें भी जितने होंगे कि सब छोड़ना पड़ेंगे, जितने ही घबराना नहीं, उन सब का मेरा त्याग है, उसको बोलते सावध योग परित्याग, समझना, सावध योग परित्याग का मतलब समझे ना, ये गिन गिन के नहीं, ये जो मैं तुम्हें कहा था ये महिलाओं के व्रत कुछ दम नहीं है इनमें, एक एक चीज के व्रत नहीं होते हैं, तुम्हारी कौन सी प्रतिमा है, कौन सी भूमिका है, और उस भूमिका में क्या क्या चीज खाने योग्य नहीं है, वो सब एक साथ छोड़ना पड़ती है, उसका नाम है जब आपको दीक्षा लेते हो तो एक एक चीज गिन गिन के छोड़ते हो। अरे रखना हो तो गिन के रख लो कि एक लंगोटी रखेंगे, एक चदरा रखेंगे, चुल्लक बनना है, चुल्लक बनना है, तो बाकी सब छोड़ा, सूट पैंट छोड़ा, फिर धोती छोड़ी, कुर्ता छोड़ा, पजामा छोड़ा, चड्डी छोड़ी, बनियान छोड़ी, कितने 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 त्यागी बनोगे, कितनी चीजों के त्यागी बनोगे, समझ गए ना। सामूहिक असली धर्म तो वो ही है, चारित्र भी वो ही है, वृत्ति भी वो ही है। अपने दो ही वृत्त तो है ना, एक अनुवृत्त और एक बड़े वृत्त, एक बड़े भैया एक छोटे भैया, अनु माने छोटे और बड़े माने महा, क्यों, एक महावृत्त एक अनुवृत्त, तीसरा वृत्त कौन है बोलो, मैं ज्यादा समय उधर को नहीं मुड़ना चाहता हूं, तो इतने में समझ लो। अब वो कहते देखो, जो जीव या मुनिराज समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, माने जब उनने दीक्षा ली थी तो उस वक्त मुनि दीक्षा लेते वक्त समस्त सावध का त्याग किया जाता है, प्रत्याख्यान माने त्याग, तो समस्त सावध योग के त्याग, माने ऐसा नहीं कि इन मुनि महाराज ने ये छोड़ा, इन मुनि महाराज क्या होता है, मुनि महाराज होते हैं, यदि तुमने मुनि दीक्षा ली तो जो मुनिराजों के लिए छोड़ने योग्य है वो सब छूटेगा एक साथ, ऐसा नहीं कि बेटे जरा बड़े हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो उन्हें को ज्यादा मेरे को थोड़ा कम, किसी को भी अधिकार नहीं है रंच मात्र भी कमीशन ममीशन देने का, सुविधा देने का रंच मात्र भी अधिकार नहीं है। जो जीव या मुनिराज समस्त सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, प्रत्याख्यान माने त्याग, परम सामायक नामक चारित्र की, तो मुनिराज ने वो चारित्र लिया, वो कौन सा चारित्र लिया, अनुवृत्त के महावृत्त, महावृत्त तो चारित्र कहां है, ये तो चारित्र का मेल है, ये तो स्वभाव रूप है, ये तो आश्रव तत्व है, ये तो ये संवर तत्व कहां है, तो क्या लिया देखो, परम सामायक नामक चारित्र, वो परम सामायक माने शुद्ध उपयोग, वो मुनि वो दीक्षा दी तो उनने हमने तो शुद्ध उपयोग की तो प्रतिज्ञा नहीं ली थी, अरे बाप उसके बिना दीक्षा होती ही नहीं, कि हमारे गुरु ने तो नहीं बोला था शुद्ध उपयोग, ये कहा भी नहीं था हमको, हमने पूछी थी तब भी नहीं कही थी, कुछ भी हो तुम भगवान जिनेन्द्र की मूर्ति के सामने भी लेते तो तुम्हें परम सामायक की ही प्रतिज्ञा लेनी पड़ती, माने मुनि धर्म को शुद्धोपयोग रूप है और वही स्वीकार किया जाता है, निखिल अखिल का नाम वो सुनो, टोडरमल जी ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर, लिखा कि नहीं लिखा, यानी यही प्रतिज्ञा ही यही होती है कि हमारे महाराज ने तो नहीं दिलाई थी, अब मैं किसी के महाराज की अकेले की बात नहीं करता, मुनि दीक्षा किसी को भी लेनी हो और कोई दे तो वो परम सामायिक नामक चारित्र की ही प्रतिज्ञा की जाती है, प्रतिज्ञा करके, अब करके भी यानी प्रतिज्ञा तो ऐसी कर ली और कर क्या रहे, देखो क्या कह रहे, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी कि एक वस्त्र का धागा मात्र भी नहीं ग्रहण करूंगा, ख्याल में आए ना, अकलंक देव का उदाहरण दे दे के कि मूर्ति पे धागा डाल के नाक गए थे कि वो तो परिग्रह सहित हो गई, यानी मैं धागा मात्र भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा, एक नया पैसा स्वीकार नहीं करूंगा, आप समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि हमने तो नहीं ली थी प्रतिज्ञा, हमने जब दीक्षा ली थी हमने तो साफ कह दी थी कि हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाराज ने कह दी थी अरे तुम ले तो बाद में सब हो जाएगा, हम बैठ रहे हैं ना, क्यों? इसका अर्थ है एक कैसेट बन रहा है, टीवी पे जाएगा, सारी दुनिया देखेगी, एक किसी को छिपा करके ये बात नहीं कही जा रही है ना। इसका कोई अलग अर्थ हो जो मैं बता रहा हूं तो वो मुझे बताए, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम बताओ क्या करें, तुम बताओ। हम तुम बताओगे हमें और बता दोगे और तुम्हारी बात सच्ची होगी और हमारी झूठी निकल जाएगी तो तुम क्या करोगे? हमसे पूछा तो हम तुमसे पूछते हैं तुम्हें क्या करवाना है, क्या करवाना है, स्वीकार कर लेंगे, और क्या कराना है बोलो, आज सच बोलो, और क्या? माने वो जो बात सत्य होगी वो स्वीकार कर लेंगे, वो गलत होगी वो उसके जाएंगे, क्या फांसी पे चढ़ाओगे, क्या करवाओगे? समझ में आई ना? देखो अब देखो, करके भी और रंच मात्र भी शुभ भाव। राजेंद्र जी सुनो, धूर्त अभिसारिका कहें कहां है, धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ। अब ये सब इनका अर्थ समझाना पड़ेगा सबका। देखो धूर्त का अर्थ तो आप समझते ही हैं कि इसका भी अर्थ समझाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं अभिसारिका, अभिसारिका क्या होता है? अभिसारिका साहित्य में नायिका भेद होते हैं, नायिकाएं होती हैं कई तरह की साहित्य के क्षेत्र में। अभी जो ने साहित्य का अध्ययन किया होगा वे थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, लेकिन 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो लेकिन ये अभिसारिका माने वो कि अपने पति से छिपकर अपने पति को बिना बताए बुद्धिपूर्वक छिपकर जो प्रेमी से मिलने जाती है जो औरत, उसको अभिसारिका बोलते हैं। समझे ना? यदि अमावस की रात हो तो काली साड़ी पहन के जाती है, पूर्णमासी की रात हो तो चांदनी के कलर की साड़ी पहन के जाती है कि जिसमें कोई पहचान नहीं पाए, देख नहीं पाए। आप समझ में आए ना? बिल्कुल जनरल जैसी दिखे, छिप जाए, छिप कर। आप समझ रहे ना? उसको बोलते हैं अभिसारिका। तो आप समझ लो वो क्या कैसी होगी, वो कैसी महिला होगी, और वो भी फिर धूर्त हो तो क्या कहना। माने उतने में आचार्य को संतोष नहीं हुआ कि किससे उपमा दे रहे हैं, वो उच्च से उच्च शुभोपयोग से उसको धूर्त अभिसारिका कह रहे हैं। बोलो इसका अर्थ बताऊं क्या नहीं बताऊं मैं आपको, बोलो है? शुभोपयोग परिणति, परिणति है ना, तो जो स्त्रीलिंग हो गई ना, इसलिए अभिसार का, धूर्त अभिसार का की भांति। इस कोष्टक में लिखा है ना, नायिका संकेत के अनुसार अपने प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री, उसको अभिसारिका बोलते हैं, अभिसारिका नायिका। ये जितने बड़े बड़े कवि हैं ना, कालिदास वगैरह, इनके बड़े बड़े नाटक हैं, तो उनमें जो नायक नायिका होते हैं तो उसमें नायिका भेद होता है कि तुम्हारी ये नायिका है फला नाटक की, तो वो कौन सी है, अभिसारिका है, फलानी है। 2500 नाम होते हैं, मुझे भी ज्यादा नहीं आते, पढ़े सब थे लेकिन वो पढ़े भी 50-60 वर्ष हो गए, अभी कितने याद रहेंगे, और क्या करना है उसको याद रख के है? ये तो अमृतचंद ने रखा इसलिए याद रहा। देखो सुख की भांति शुभोपयोग परिणति, देखो ये शुभोपयोग परिणति को धूर्त अभिसारिका की उपमा दी है आचार्य देव ने।
उस शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ। अब ये कौन है जिसने ये प्रतिज्ञा ली है, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि वो जो धूर्त अभिसार का है ये उसका पति नहीं है, ये इसका वो प्रेमी है कि जिससे वो मिलने जा रही है।
बनारसी दास भी कवि थे, उनने भी ऐसी अभिसारिकाओं की जिक्र किया है, भले ही नाटक के रूप में नहीं किया हो लेकिन ऐसे छंद मिलेंगे बनारसी दास के नाटक समय सार में।
एक बताता हूं, प्रेम लगो प्रेमी से यद्यपि भरतार के अंक है। कौन सुनाएगा
ने? उसमें एक छंद आता है दादा कि वो पति की गोद में बैठी है, यद्यपि भरता के अंक है, भरतार के अंक है, भरतार की गोद में है तो भी उसका मन जैसे अपने प्रेमी से लग रहा है। ऐसा उदाहरण बनारसी दास ने दिया है। ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा यद्यपि शुभाशुभ भावों के बीच में है तो भी उसका मन तो उस शुद्धोपयोग परिणति से लग रहा है। बनारसी दास ने दिया वो छंद, मुझे याद नहीं रहता है, मैंने बोला ना है? मुझे भाव पूरा याद है, यद्यपि भरतार के अंक है, भरता की गोद में है पर मन उधर लग रहा है, और उसका वर्णन राजवार्तिक में मिलेगा ऐसा उदाहरण। सुनो अभी देखो, ऐसे अच्छी तरह देखना तुम, और जितने समय सार मिले ना 10-20 उन सब में देखना, और तुमको देखने का विकल्प 2-4 तो मैं ही दे दूंगा, अपने पास रखता हूं मैं, सब रखे हैं मेरे पास, है ना, कि कुछ दूसरा अर्थ हो तो। शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ, वो जिसने दीक्षा ली है, जिसने सर्वसाबद्ध का त्याग किया है, जिसने शुद्धोपयोग धारण करने की प्रतिज्ञा ली है, अर्थातु शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ कौन, वो जिसने ये प्रतिज्ञा की है, यदि मोह की सेना को के बस बर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, ये मोह के बस बर्तन पने ये कर रहा है ना, सब राग तो वही है ना, मोह ही है ना, राग तो मोह है ना, बर्तन पने नहीं कर डालता तो ऐसा जो वो साधु है जिसके महादुख संकट निकट है, ये अनुप्रास देखो, संकट निकट, जिसके महादुख संकट निकट है, क्या मतलब महादुख क्या होता है, संकट क्या होता है, निकट नहीं जानते, महादुख कहां है, निगूद में, महादुख संकट यानी वो निगूद में जाएगा। अब घबराना नहीं, पूरी बात सुनना कि कैसे वो शुभोपयोग परिणति, शुभोपयोग वाला तो स्वर्ग में जाता है, यदि वो निगूद में जाएगा तो हमारे तो भगवान ही मालिक है, तो हम क्या करें, तो हम कहां जाएंगे, हम तो शुभोपयोग वाले हैं, क्यों, और हमें शुभोपयोग भी बहुत कम होता है, अशुभोपयोग होता है, बोलो देखो कि नहीं, वो यहां से मर के तो स्वर्ग ही में जाएगा, लगाना नहीं, फिर वहां से देव एक इंद्रिय हुआ, तो वो देवगति से जाकर के माने उतना पुण्य का फल भोग कर और फिर वहां से निगूद चला जाएगा। महादुख संकट का अर्थ है। क्या क्या महादुख संकट है निकट जिनके, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है। अब वो आदमी जिसको शुभोपयोग में जरा भी गुंजाइश है, ख्याल में आए ना कि नहीं, नहीं मैं अपने घर नहीं बुलाता हूं किसी को, बात नहीं, वो सड़क पे खड़े होके बात कर लेता, क्यों, मैं तो ही चला जाता हूं, नहीं कर लेता हूं, होटल में कर लेता हूं, मैं नहीं करता, क्या मूर्खता की बात कर रहा है। ये कहते हैं रंज मात्र भी ये इस गाथा के लिए आचार्य की मंशा है कि नहीं, वो मंशा मैं स्पष्ट करूं कि नहीं, और वो कहां विरुद्ध है आगम की, क्योंकि और जो आगम है श्रवणान योग का आगम है जो ये कहता है कि अंतर्गत परिणति ऐसी हो तो बाहर का आचरण ऐसा होता है, उस आचरण का वर्णन करेगा, तो वो तो देह की क्रिया को भी धर्म कहेगा, वो तो खाना नहीं खाने को भी उपवास कहेगा। लेकिन खाना पुद्गल शरीर तो बिल्कुल अलग है, आत्मा में और देह में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। ये तत्व ज्ञान की बात आएगी और वो बात आएगी तो दोनों में से कौन सत्य होगी, कि सत्य का क्या, दोनों नए से दोनों सत्य हैं, वो उस नए की बात है, इस नए की बात है। लेकिन मोक्ष किस नए से होता है, शुद्धाश्रय क्यों, तम शुद्ध नयम बियाणी ही, कि जो शुद्ध आत्मा का शुद्ध नये का आश्रय करता है उसको कर्म का बंधन करते हैं, उसके तो कर्म के बंधन बंधने के मार्ग हैं। उसमें साथ में ये लिखा ना कि ऐसा ऐसा स्वभाव करे वो धर्म है, धर्म है, धर्म है, साथ में ये भी तो लिखा स्वर्ग में जाएगा, वो स्वर्ग चतुर्गति है, वो चारों गतियों में दुख ही दुख है, लिखा को भूल जाता है, तो सुख पाएगा जान कहां लिखा, और जब दुख ही पाएगा तो फिर वो काय का धर्म है कि जिससे दुख मिले। ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसा वह माने वह मुनि, मैंने तो भैया ऊपर लिखा जो जीव है अथवा में मुनिराज डाला है, क्यों कि संस्कृत में तो या ही लिखा अकेला, या खलु है, जो ही लिखा अकेला, जो हम तो नहीं कह रहे मुनिराज की बात, फिर तुमने मुनिराज कैसे घुसेड़ दी, तुम अपनी बताओ, कि इसलिए घुसेड़ दिया कि इसमें लिखा समस्त शाब्द के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामवायक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके, ये मुनि करते हैं सामान्य ग्रस्त नहीं करते हैं, समझ गया प्रवीण, क्यों कर दिया हमने, लेकिन अथवा में किया, घबराओ मत, मैंने तो वो जो ही रखा है, समझ गया ना, लेकिन ये आगे ही लिखा ना कि इसने ये किया, तो आगे लिखा हो कि जो नग्न दिगंबर भेष धारण करके, तो क्या कहते, तो जो मुनिराज नहीं लिखे, लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, नहीं लिख नहीं सकेंगे तो भी अंदर में तो मानना ही पड़ेगा ना, जो आगे के विशेषण लगे हैं उनसे किसकी बात चल रही है, ये बात आएगी। देखो कहते इसलिए, अब ये निष्कर्ष निकालते हैं खुद, मेरे द्वारा मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस ली गई है, ये कमर कस ली गई है, इसमें एक एक शब्द में दम है, क्योंकि बद्धा कक्षेयम, मैं कमर कसूंगा, ऐसा नहीं है, वायदा नहीं है, वायदे में फायदा नहीं है, है? तुम जो कहोगे मैं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए दर्शन मोहो चातम, ये नहीं कि नीचे वाले छोटे वाले प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कुछ नहीं, संपूर्ण संतुलन तक सब, पूरी मोह की सेना को जीतने के लिए मैंने कमर कस ली है, और अश्विनी गाथा आएगी उसमें दर्शन मोहिनी की सेना को जीतना कैसे, 81 में आएगी चारित्र मोहिनी की सेना को जीतना कैसे, 82 में आएगी सर्व ही अरहंत ने विधि
सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि,
यही विधि बताई है सबको, वो यही विधि से भी उन्हें कर्म के जीते हैं, जो विधि मैं बता रहा हूं यहां। अब बोलो तुम्हें दो नंबर का माल नहीं है क्यों, ये ऐसा ही छंद जो व्यासीमा छंद है ना, ये के पूजा की जयमाला में मैंने डाला है,
किसे याद है कोई बता सकता हो तो बता, बोल बोल, खड़े हो गए, स्पीकर दे दो भैया, से हुए तो ले ले, चलो बोल जरा ढंग से, पूजा की जयमाला में। हाँ,
जो हुए आज तक अरिहंत सब ने अपनाया यही पर उपदेश दिया, इस ही प्रकार हो सबको मेरा नमस्कार।
कौन सी पूजन में है, है? देव सदगुरु के में?
महावीर पूजन,
महावीर पूजन में है ना, किसी में भी होगी। मैं तो सिर्फ पूजन का नाम तुम बता दो तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कितने साल पहले लिखी गई पंक्ति है और कुछ मतलब नहीं है। मैंने ये बात 2500 साल पुरानी लिखी गई है, मैं तब से मेरे ख्याल में ये बात थी। सुने ना, अश्विनी गाथा पे तो बहुत रीतते हैं अवैजी, व्यासिनी गाथा को कोई याद नहीं करता है। मैंने इस पूजा की जयमाल में व्यासिनी गाथा का भाव डाला। जो हुए आज तक अरिहंत उपदेश दिया, इस ही प्रकार हो सबको मेरा नमस्कार।